अथर्ववेदीय मंत्र भाग के मुंडक उपनिषद का विचार हम लोग प्रारंभ किए हैं। मुंडक उपनिषद का शांति मंत्र है भद्रं कर्णे भी श्रुणुयाम देवा इत्यादि। मंत्रार्थ का अनुसंधान करते हुए मंत्र का पाठ ज्यादा लाभकारी हुआ करता है, अतः भद्रं कर्णे भी श्रुणुयाम देवा इत्यादि शांति मंत्र का अर्थानुसंधान पाठ करते समय होता रहे, इसके लिए आवश्यक है इस मंत्र के अर्थ को भी समझना। तो मंत्रार्थ पर विचार हम लोग परसों कर रहे थे। भद्रं कर्णे भी श्रुणुयाम देवा इत्यादि वाक्य सब के सब इस मंत्र में आए हुए प्रार्थनात्मक हैं और साधकों की हितैषी श्रुति, साधक के कल्याण के लिए अनेक साधन बताती है, उसमें से प्रार्थना भी एक साधन होता है। और प्रार्थना भी कैसी करनी है, किससे करनी है, यह श्रुति सिखाती है। शांति मंत्र ये सब प्रार्थनात्मक साधन है, ये बताते हैं प्रार्थना करें। प्रार्थना यद्यपि है याचना, तो श्रुति आपको याचक बनना सिखा रही है। तो शुरू में तो जब तक अपने आप को यत किंचित समझता है साधक, तो निश्चित ही याचक है। लेकिन याचक की याचकता को, याचकपने को ही समाप्त करने के लिए श्रुति कहती है कि ऐसे प्रार्थनीय से प्रार्थना करो कि फिर आपको किसी से प्रार्थना करने की आवश्यकता ही न पड़े। ऐसे की प्रार्थना करो, ये इंद्रिया शरीर मन अपने वशीभूत नहीं है साधक का। साधक चाहता है कल्याण के साधन जो शास्त्र ने बताए हैं उनमें प्रवृत्त होना, कल्याण के साधन का अनुष्ठान करना चाहता है। लेकिन शरीर इंद्रिया मन उनके संस्कार कुछ अलग है, उनका स्वभाव कुछ अलग है, वे अपने स्वभाव के अनुसार प्रवृत्त होना चाहते हैं। तो उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति अनादिकाल से असंख्य जन्मों से हो ही रही है, कार्यक्रम संघात की। उससे हमारा कल्याण हुआ नहीं, कल्याण होता तो जन्म न होता। जन्म हुआ है इससे सिद्ध होता है कि कल्याण नहीं हुआ है। ये क्यों नहीं हुआ, तो असंख्य जन्मों से शरीर इंद्रिया मन बुद्धि अपने स्वभाव के अनुसार प्रवृत्त हो रही है और इनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति संसार का हेतु है और इनकी शास्त्रीय प्रवृत्ति कल्याण का हेतु है। मोक्ष का हेतु है। तो शरीर इंद्रिय मन बुद्धि की शास्त्र ने हमारे कल्याण के जो साधन बताए हैं उन साधनों में ही हो, इसके लिए आवश्यक है। इनके अधिष्ठाता जो देव हैं, इन देवताओं को अपने अनुकूल करना, शरीर इंद्रिय मन बुद्धि के संचालक जो देवता हैं, ये आपके अनुकूल हो जाए तो आप इनसे आपके कल्याण के साधन रूप जो हैं उनमें प्रवृत्ति करा सकते हैं, इनकी प्रवृत्ति हो सकती है, कल्याण को प्राप्त कर सकते हैं। और ये भद्रं कर्णे भी शृणुयाम देवा मंत्र आपके शरीर इंद्रिय मन के संचालक देवताओं के अनुग्रह के लिए, अनुकूलता के लिए उनसे प्रार्थना करना सिखाता है। ये मंत्र बता रहा है कि ऐसी प्रार्थना करने से इंद्रियादि के अनुग्राहक देवता आपके अनुकूल होंगे, आप जो चाहते हैं वो कराएंगे उनसे संचालित होने वाले शरीर इंद्रिय मन से। इसलिए देवताओं का अनुग्रह प्राप्त हो तो भद्रं कर्णे भी शृणुयाम देवा इत्यादि वाक्य से प्रार्थना का प्रकार बताया जा रहा है। देवता को आप आपके पास की कुछ वस्तुएं देख करके संतुष्ट नहीं कर सकते, अपने अनुकूल नहीं कर सकते। आपके पास है ही क्या? देवताओं के ऐश्वर्य के सामने आपके पास क्या ऐश्वर्य है? तो आप कुछ दे करके उन्हें संतुष्ट कर ले, ये नहीं। तो जो आपसे समर्थ हैं उनको आपके अनुकूल बनाना है तो एक साधन बचता है कि उनसे प्रार्थना करो, अर्जी करो। हाँ, तो इसलिए प्रार्थना ही एक यत्किंचक जो साधन साधक है उसके पास साधन है। तो हे देवा ऐसा संबोधन करके ये कहा जा रहा है कि मेरी श्रोत्र इंद्रिय भद्र का श्रवण करें। और भद्र शब्द का अर्थ है कल्याणकारी। इंद्रियों से होने वाला व्यापार दो प्रकार का है, एक अनर्थकारी, दूसरा कल्याणकारी। यदि दूसरों के दोष सूचक वाक्यों को, दोष बोधक वाक्यों को, जिनका उपयोग आपके जीवन में कुछ भी नहीं है, आपके कल्याण में कुछ नहीं है, ऐसे वाक्यों का श्रवण करते हैं तो निश्चित ही जिनके दोषों का वर्णन सामने वाला कर रहा है उन वाक्यों को सुनोगे वो वाक्यार्थ आपको समझ में आएगा, वाक्यार्थाकार वृत्ति बनेगी। और वाक्यार्थ होगा क्या कि फलाने में ये दोष है। तो और जैसी वृत्ति बनेगी वह वृत्ति समाप्त होने से पहले वो संस्कार बुद्धि में छोड़ देगी अपने विषय का। तो दूसरों के दोषाकार वृत्ति निंदात्मक वाक्यों को सुनकर के होगी तो दूसरों के दोष जो आप में थे नहीं उनका संस्कार आपकी बुद्धि में पड़ेगा, और संस्कार फिर अपने विषयों का स्मरण कराता है, और बार बार संस्कार किसी विषय का स्मरण होता रहेगा तो वो संस्कार और दृढ़ होता जाता है, और वो जो दोषों का संस्कार दृढ़ होता जाएगा तो उन दोषवान को जैसा फल मिलता है वैसा फल आपको मिलेगा, वो फल भोगने के लिए वैसा शरीर प्राप्त करना पड़ेगा। तो वो शब्द श्रोत्र इंद्रिय का व्यापार हुआ दूसरों के दोष बोधक वाक्यों का श्रवण रूप आपके अनर्थ का हेतु, वो अभद्र श्रवण हुआ, भद्र श्रवण नहीं कहा जाएगा। और नेत्र इंद्रिय की श्रोत्र इंद्रिय की अनुग्राहक देवता दिशाओं से प्रार्थना की जा रही है कि आप के अधीन मेरी श्रोत्र इंद्रिय है, आप श्रोत्र इंद्रिय की संचालक हो, आप मेरे श्रोत्र इंद्रिय से वही श्रवणात्मक व्यापार कराना जो मेरे कल्याण का हेतु बने। ये प्रार्थना पहले वाक्य में है कि भद्रं कर्णे भी श्रुणुयाम देवा, और हे देवा वयम अक्षभी ही भद्रम पश्येम। तो रूप से रूप ग्रहण ये चक्षु इंद्रिय का व्यापार है, तो जैसे श्रोत्र इंद्रिय का व्यापार दो प्रकार का है, कल्याणकारी अनर्थकारी, ऐसे चक्षु इंद्रिय का भी अनर्थकारी कल्याणकारी दो प्रकार का व्यापार माना जाता है। संसार का रूप दर्शन अनादिकाल से असंख्य जन्मों से होता आ रहा है, उससे बार बार जन्म हो रहा है, यह अनर्थ है। तो रूपवान दो है, एक संसार की वस्तु है और दूसरा भगवान। भगवान के भी दिव्य नाम रूप है ना, उपनिषदों ने बताए हैं कि भगवान हिरण्य स्मश्रु हिरण्य केशा आ नखात सर्व एव हिरण्मय, सोना जैसा चमकता है ऐसे चमकीला रूप भगवान का है, पूरा शरीर चमकता है और आंखें लाल कमल की पंखुड़ी जैसी होती है, ऐसी लाल है उनकी। ऐसा औपनिषद जो परमात्मा है सगुण साकार उनका रूप बताया है, और पुराणों ने बताया हुआ यदि आप शिव भक्त हैं तो पौरुषे ग्रंथों ने बताया कि चंद्रोद्भासित शेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पैर भूषित कंठ कर्ण विवरे नेत्रोत्थ वैश्वानरे इत्यादि। जो भगवान शिव का स्वरूप है उसका नेत्र से दर्शन यदि कर रहे हैं तो चतुर्थ पंक्ति में फल क्या बताया, यदि शिव में आपका आपके शिव के इस स्वरूप में चक्षु इंद्रिय के माध्यम से मन समाहित हो गया तो मोक्ष के लिए अन्य साधन की आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव के इस स्वरूप में ठीक से आपका मन समाहित हो तो शिव जी आपको समय पर, जिससे आप जन्म मरण रूपी भवसागर से पार हो जाओगे, ऐसा बोध कराते हैं। आप वैष्णव हैं तो ससंक चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसी रुहे क्षणम इत्यादि से बताया गया जो भगवान का स्वरूप है साकार रूप, उसका चक्षुइंद्रिय से ग्रहण, एक चक्षुइंद्रिय का ये व्यापार हो रहा है और एक चक्षुइंद्रिय का व्यापार हो रहा है संसार के विषयों का रूप दर्शन, जो परंपराया आपके अनर्थ का हेतु बन जाता है। बुद्धिनाशात प्रणश्यति जैसे गीता में कहा गया है, ध्याय तो विषयान पुंस से लेकर के। तो ये दो प्रकार का व्यापार जैसे श्रोत्रेन्द्रिय का है ऐसे सभी इंद्रियों का है। यहां श्रोत्रेन्द्रिय और चक्षुन्द्रिय उपलक्षण है बाकी इंद्रियों का। तो तत्तद इंद्रिय की अनुग्राहक देवता से संबोधन करके प्रार्थना करने के लिए कहा गया कि स्वभावतः जो विषय अभिमुख इंद्रियां हैं वे विषयों से विमुख होकर के जिससे मेरा कल्याण हो ऐसे व्यापार में संलग्न हो। ये भद्रं कर्णे भी सुनुयाम देवा और भद्रं पश्येम अक्षभीर इन वाक्यों से कहा है। ये प्रार्थना की गई उनके अनुग्राहक देवताओं से। एक प्रकार से ये उपासना है, ज्ञानेन्द्रियों से उनके हमारे कल्याण के हेतुभूत व्यापार होते रहे तो मन में भगवान के दिव्य नाम रूप का ही आवर्तन होता रहेगा ना, तो ये सगुण साकार उपासना होगी। और ये यदि आपसे होता जा रहा है हमेशा तो माना जाता है कि आप कृतोपास्ति बन गए। शुरू में तो करना होगा, करते 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 अभ्यास होगा, जैसा जैसा दृढ़ वैसा वैसा ये स्वभाव बन जाएगा। तो जैसे सांसारिक नाम रूप का ग्रहण करना स्वभाव बन गया हमारा, ऐसा हमारे कल्याण के हेतुभूत शब्द रूप का ग्रहण करना हमारा स्वभाव बन जाए। अभी तो सत्संग में आना पड़ता है और आते आते स्वभाव बन जाता है, तो शायद साढ़े सात सवा सात या सात बजे आकर के बैठते हैं हमारे तिजोरी वाला जी। अरे जब से आश्रम बना है तो उनका यह स्वभाव बन गया। ये समय कभी नहीं आना होगा अस्वस्थता आदि के कारण, तो शायद उनका उस समय जहां भी रहेंगे मन नहीं लगता होगा, क्योंकि इतने समय में यहां करके सब बाद में आता है। वे पहले से आकर के जो कैसेट चलती है महाराज जी की उसको भी वैसा ही सुनते जैसे प्रवक्ता बोल रहे हैं वर्तमान में, ऐसा ही ध्यान देकर के। तो ये स्वभाव बनता है करते करते करते। तो अभद्र यानि अनर्थ की हेतुभूत कार्यक्रम संघात की प्रवृत्ति छूट जाए और आपके कल्याण की हेतुभूत प्रवृत्ति कार्यक्रम संघात से होती रहे और वो स्वभाव बन जाए जब, तो माना जाता है आप कृतकर्मा हैं, कृतोपास्ती हैं। तो कृतोपास्तित्व तो बता करके कृतकर्मत्व तो बताने के लिए यजत्रा शब्द है कि हे देवा वयम यजत्रा भवाम, ऐसा अन्वय करना कि हे देवताओं हम यजत्र बने। यजत्र का अर्थ है यजनशील। यज धातु संस्कृत में है उससे यजत्र शब्द बनता है। यजत्र शब्द का अर्थ होता है, यज धातु का अर्थ होता है यज, देव पूजा, संगतिकरण, दानेशु। इसी यज धातु से यज्ञ शब्द भी बनता है। तो हम देवताओं की पूजा करने वाले बने, यजत्रा बने, हम देव पूजा संगतिकरण सत्संगी बने, अच्छे कर्म करने वाले बने, अच्छी संगति करने वाले बने, और जो हमारे पास है उसके दाता बने। ये यजत्रा शब्द का अर्थ निकलेगा। हे देवा वयम यजत्रा भवाम। और एक स्तुति है कि इसके लिए जरूरी है, पहले बताया था कि हम जब जन्म लेते हैं तो साथ में तीन ऋण लेकर के ही जन्म लेते हैं। जिस राष्ट्र पर जितना कर्ज है और उस राष्ट्र की नागरिकों की संख्या जितनी है उसमें विवाह करके बांटते हैं, तो कहा जाता है कि उस राष्ट्र का नागरिक जन्म लेते ही इतना कर्ज लेकर के जन्म लेता है। ऐसे ही चाहे राष्ट्र कितना भी संपन्न न हो, संपन्न राष्ट्र में दूसरों को कर्ज दिया हुआ भौतिक दृष्टि से राष्ट्र है, उसमें भी आप जन्म ले रहे हैं तो दूसरों को ऋण देने वाले नहीं लेकिन ऋणी बनकर के ही जन्म ले रहे हैं। जायमानो वै ब्राह्मण त्रिभिर ऋणैर ऋणवान एव जायते, ये कहा गया। मनुष्य जब जन्म लेता है तो जन्म के साथ तीन ऋण साथ में लेकर के जन्म लेता है, तीन ऋणों से युक्त होकर के जन्म लेता है। वे तीन ऋण है पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। तो पितृ ऋण यह है कि हमें अपने कल्याण का हेतुभूत जो ये मनुष्य शरीर मिला, कल्याण के साधनों में सबसे पहला साधन मनुष्य शरीर को माना है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, हमें अपने कल्याण के लिए धर्म करना है और धर्म बिना शरीर के नहीं होता, इसलिए शरीर प्रथम साधन है। और इस शरीर को माता पिता ने इस संसार में प्रकट होने से लेकर के उससे पहले से ही गर्भ से ही गर्भस्थ शिशु को कोई तकलीफ ना हो, इसलिए माता जैसे ही नया सदस्य आने का होता है तो खान पान आदि कितना संयम रखती है, और संस्कारी परिवार के लोग जैसे ही नया सदस्य आना है ये जानकारी मिलती है तो फिर गर्भ में भी एक निश्चित समय के पश्चात शिशु आपके व्यवहार से सीखता है और ये ज्ञात होता है प्रहलाद की कथा से भी और अभिमन्यु की कथा से भी। गर्भ में सीखता है ना शिशु। प्रहलाद ने भले ही हिरण्यकश्यप का अंश है लेकिन गर्भावस्था से ही भगवान की भक्ति के संस्कार प्राप्त कर लिए नारद जी के आश्रम में, जब उनकी मां कयाधु रह रही थी और बचपन में भी वो संस्कार लिए, का मतलब शिशु एक निश्चित समय गर्भ में व्यतीत होने के बाद जैसे ही उसके इंद्रियों के गोलकों का निर्माण होता है, जिन जो जो गोलक बनते जाते हैं वह वह इंद्रिय व्यापार करना प्रारंभ करता है। इसलिए संस्कारी परिवार के लोग हमारे परिवार में आने वाला नया सदस्य हम जैसा चाहते हैं ऐसा ही आए, तो कोई न कोई आदर्श आपका होता है। उस आदर्श महापुरुष के जीवनी आदि को पढ़ना, भगवत भजन आदि कराना, उस नए शिशु को पालन पोषण कर रही है जो माता, उससे सब कराते हैं। पूजा पाठ आदि भी, तो सदग्रंथों का श्रवण आदि भी, स्वयं वाचन आदि भी, जिससे कि विचार माता के विचारों का गर्भस्थ शिशु पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इसलिए जब नया सदस्य आना होता है उस समय जैसा माता के चित्त में संस्कार प्रकट होगा ना, जैसे जैसे विचार आएंगे, समझना चाहिए कि हमारे कुल में आने वाला नया सदस्य का व्यक्तित्व ऐसा ही होगा, उन संस्कारों वाला ही, जैसे विचार आता है तब से संस्कार देना प्रारंभ करते हैं हमारे संस्कारी माता पिता हमको। और फिर जन्म के बाद भी एक समाज में प्रतिष्ठित जीवन जीने के लिए हमें तैयार करते हैं, नागरिक बनाते हैं, अपनी आवश्यकताओं को भी अलग करके बचपन में बच्चों की आवश्यकताएं पूरी करते हैं। ये बड़ा उपकार है माता पिता का, तो ये माना जाता है ये पितृऋण है हमारे ऊपर, और पितृऋण से निवृत्ति का उपाय बताया गया। जीवित माता पिताओं की तो सेवा, और जो स्वर्ग में गए हुए हैं उनके निमित्त से समय समय पर तर्पण श्राद्धादि पितृतर्पण आदि, और हमारे कुल में आने वाले नए सदस्यों को हमारे पूर्वजों ने जो हमको संस्कार दिए हैं उन संस्कारों से संस्कारित करना, ये सब पितृऋण से मुक्ति के उपाय हैं। ये पितृऋण से उपाय और इन उपायों को अपना करके जो पितृऋण से मुक्त होता है, फिर देवताओं का ऋण आता है, तो देवताओं के अनुग्रह से ही हमारा जीवन चल सके, इसलिए समय पर इंद्र वृष्टि करते हैं, सूर्यदेव हमें प्रकाश भी देते हैं व्यवहार का हेतु हो, तो यदि सूर्योदय ना हो रात्रि रात्रि रहे तो किसान ने खेत में बोया हुआ जो गेहूं चावल आदि है अन्न वो पकता नहीं है, उसको पकाने के लिए चंद्रमा के किरणों की भी आवश्यकता है, तो सूर्य किरणों की भी आवश्यकता है। तो इन देवताओं का, ऐसे वायु देवता हमारे जीवन आवश्यक ऑक्सीजन आदि देकर के हमें वो बढ़ा रही है ना, संवर्धित कर रही है, तो देवताओं का उपकार है हमारे ऊपर। उनसे मुक्त होने के लिए देवताओं के ऋण से देवताओं की पूजा दी, अपने कुल देवताओं की पूजा दी, और वैदिक जो पांच देवता हैं उनकी पूजा करना आवश्यक माना गया है। इन्हीं से देवऋणों से मुक्ति मिलती है। वैदिक पांच देवता हैं शिव, शक्ति, गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, आदित्य और विष्णु। तो इनकी पूजा करना आवश्यक है, इनसे देवऋणों से मुक्ति होती है। और ऋषि ऋण है, ऋषियों ने हमारे कल्याण के लिए ही वेदों को प्रकट किया है। ऋषि कहा जाता है ऋषयो मंत्र द्रष्टारः। वेद कहीं आते जाते नहीं हैं, लेकिन अव्यक्त रूप से, अव्यक्त शब्द के रूप में रहते हैं। और समाधि अवस्था में ऋषि लोग मंत्रों का दर्शन करके हमारे उपयोग के, कल्याण के साधन के रूप में मंत्रों को प्रकट करते हैं। और वेदों को सीधा समझना हमारे लिए कठिन है, वेदों को धारण करना कठिन है, इसलिए व्यास जी ने, पहले तो एक ही वेद था ना, लेकिन हमारी अल्प बुद्धि को देखते हुए अलग अलग चार वेद कर दिए। कहा कि इतना पढ़ने से भी और इतना इतना धारण करने से भी कल्याण के भागी बनेंगे। ये सब अपने आप बनता है। कभी किसी को एक पत्र भी लिखना होगा तो घंटों तक सोचना पड़ता है कि क्या लिखे, कैसे लिखे। और व्यास जी ने इतना सारा लिख करके हमारे लिए रखा है, उनको कितना परिश्रम पड़ा होगा। वो अपने लिए लिखा है या हमारे कल्याण के लिए लिखा है? तो ये सब महापुरुष हमारे कल्याण के लिए वेदों के द्वारा प्रतिपादित साधनों को हमारी भाषा में समझाते हैं हमें, तो उनका हमारे ऊपर ऋण है। ऋषि ऋण कहलाता है। वो ज्ञान यज्ञ से, ब्रह्म यज्ञ से दूर होता है। ज्ञान यज्ञ है, ब्रह्म यज्ञ है जो आप कर रहे हैं, स्वाध्याय और प्रवचन, सत्संग आदि सुनना और स्वयं ग्रंथों का अर्थानुसंधान करना और स्तोत्र पाठ आदि करना, ये सब माना जाता है ऋषि ऋण से मुक्ति का उपाय। इसके लिए यहां पर और इन यजत्रा भवाम से इन तीनों को लेना। हम तीनों ऋणों से जिससे मुक्ति मिले, ऐसे साधनों का अनुष्ठान करने में समर्थ बने, ये वयम यजत्राह भवाम इसे कहा। और मान लो समर्थ होते ही शरीर छूट जाए, तो बिना शरीर के हम कैसे अनुष्ठान कर पाएंगे? इसके लिए कहा कि हमारी जितनी आयु है वह ऐसी ही धारण करने में हम समर्थ बने जो अभी तक अविवेक वशात, अज्ञान वशात हमारे जीवन का अंश बीत गया। जैसा बीत गया गतन न सोचामि, किंतु जो अवशिष्ट है वह इन तीन ऋणों से मुक्ति का शास्त्र ने बताया हुआ जो साधन है, उस साधन का अनुष्ठान करने में ही व्यतीत करें। ये एक प्रार्थना है। स्थिरे रंगे तुष्टुवांस स्तनुभिर व्यशेम देव हितम यदायु। स्थिर यानि दृढ़ बलवान, अंग यानि इंद्रिया और शरीर, तनु शब्द का अर्थ है, का मतलब कार्यकरण संघात, शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, जो दृढ़ है, स्थिर है, बलवान है, आपके अनुग्रह से देवताओं को कहा जा रहा है, हुई जो बलवान इंद्रिया, बलवान शरीर, उससे बचा हुआ जीवन देवहितम यद आयु, देवताओं के लिए हितकारक, देवताओं के लिए हितकारक तो का मतलब देवताओं का आप हित करेंगे, ऐसा नहीं, तो ये होगा देवताओं का हित भी आप करते हैं। गीता के तीसरे अध्याय में भगवान ने कहा, मैं कहता रहा हूं, आप लोगों ने सुना भी कई बार, आप वन बेडरूम वाला भी लेंगे लेकिन बी एच इतना ही नहीं होता, साथ में के जुड़ा हुआ रहता है, वो के जरूरी है, रसोई जरूरी है ना, वन बी एच के कहते हैं, हाँ, यदि समर्थ नहीं है तो एक बेडरूम वाला ही फ्लैट लेंगे लेकिन किचन जरूर साथ में होता ही है ना। स्वर्ग में जाओगे ना, बहुत विस्तीर्ण बंगले हैं, बड़े बड़े महल देवताओं के, लेकिन वहां के नहीं है, किचन नहीं है, वहां किचन की कोई व्यवस्था नहीं है, विश्वकर्मा बनाते ही नहीं है किचन, क्यों नहीं बनाते, इसलिए वहां महाराज लोग भी नहीं है और खाने के वो मेनू की लिस्ट भी देनी मिलती नहीं है, वहां छपती नहीं है। तो यहां आप जो भोजन बनाते हैं ना, तो ये देवताओं को भोग निवेदित करके फिर प्रसाद ग्रहण करने का नियम है ना, यज्ञ आदि आपको करने हैं, और यज्ञ आदि में क्या होता है, आप यज्ञ आदि अनुष्ठान करते हैं तो जिस देवता का जो अन्न है वह उस देवता का नाम लेकर के आह्वनीय अग्नि में प्रक्षिप्त करते हैं मंत्र बोल करके, और अंत में पंडित जी कहते हैं इदम इंद्राय न मम, इदम आदित्याय न मम, ये उस देवता के लिए है। और अग्नि है, जैसे मुंबई में डिब्बे वाले की व्यवस्था है ना, वो डिब्बा पहुंचाने वाले अग्नि देवता है, वो कितना भी स्वादिष्ट किसी देवता का व्यंजन हो आपने दिया हुआ, वो बीच में डिब्बा खोल करके स्वाद लेना नहीं चाहता है, वो ऐसे निरपेक्ष डिब्बा पहुंचाने वाले हैं कि जो जिस देवता के लिए आप पहुंचाना चाहते हैं उनके पास दे दो, आहुनी अग्नि के पास, वो वहां पहुंचा देते हैं। तो इसलिए उनको हव्य वाहन भी कहा जाता है, अग्नि का एक नाम है हव्य वाहन, हव्य कहते हैं देवता के अन्न को हवि, और वह पहुंचाते हैं आपने जिस देवता के नाम से पैक कर दिया है टिफिन उस देवता तक, और फिर देवता वो खा करके संतुष्ट हो जाता है। आप तो देते हैं अग्नि में, अग्नि तो जला करके उसे भस्म करता है, तो राख खाते हैं क्या, वो राख भी ले जाकर के नहीं देते हैं, लेकिन ये है कि आप के द्वारा उस देवता का आदर पूर्वक नाम लेकर के जो उनके उद्देश्य से प्रक्षेप किया जाता है ना, उससे देवता संतुष्ट होती है। छांदोग्य उपनिषद में लिखा है न वै देवा खादन्ति पिबन्ति दृष्ट्वैव तृप्यन्ति, ऐसे आपके द्वारा निवेदित जो भी है वो देवता न खाते हैं न पीते हैं, इसलिए आप यदि 5 सदस्य हैं घर में, 2 लीटर दूध लेते हैं, और घर में कई मंदिर में देवता भी तो हैं 5 और, तो उनके लिए भी तो लेना चाहिए कि नहीं। लेकिन अलग से देवता के लिए दूध, और राशन भी लाते हैं तो गिनते हैं तो राशन कार्ड में इष्ट देव का नाम लिखा हुआ है, तो राशन भी खरीदते हैं, सब्जी भी खरीदते हैं, जो भी खरीदते हैं भोजन बनाने की सामग्री, तो गिनते हैं हम खाने वाले कितने हैं। देवताओं को तो गिनते ही नहीं है, और गिनना शुरू कर दे तो एक एक देवता खाना शुरू कर दे तो कम हो जाए फिर मंदिर में से। गणेश विसर्जन जैसे करते हैं तो देवताओं का भी विसर्जन शुरू हो जाए, तो तब भी जो आप अपने लिए लेते हैं वो देवता को निवेदित करके खाते हैं, यदि वो सारा देवताओं की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है। इसलिए भगवान ने गीता में कहा 3 अध्याय में, इन देवताओं को देवताओं के द्वारा प्रसाद स्वरूप मिला हुआ जो आपके पास आपके जीवन को चलाने के लिए साधन है, वह देवताओं को निवेदित कर लें, और उनको दे करके बचा हुआ यदि खाते हैं तो वो प्रसाद हो जाता है। यज्ञ शिष्टा सिनः संत मुच्यन्ते सर्व किल विषय, सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि देवता आपने जो निवेदित किया वो खाते नहीं है, श्रुति आपको आश्वस्त करती है, न हवे देवा खादंती पिबंती दृष्ट्वैव तृप्यन्ति, लेकिन देवताओं को दिखाओगे वो तृप्त हो जाएंगे दिखाने मात्र से ही, और जब देवता तृप्त होंगे तो उनका अनुग्रह उस अन्न में आएगा, वो प्रसाद बनेगा, और वो प्रसाद प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते के अनुसार वो होता है। इसलिए परस्परम भावयंत श्रेय परमवाप्षत, भगवान ने गीता में कहा है ना कि देवताओं को आप आदर दो और देवता आपके फिर कल्याण के अनुकूल बन जाते हैं। इसलिए यहां पर यह कहा कि देवहितम यद आयु, तो देवताओं का आदर करने वाली देवता जिससे संतुष्ट होती है, ऐसी जो हमारी आयु है हमारा जीवन है बचा हुआ, वही हम धारण करने वाले बने, अपने भोग के लिए आयु का समय व्यर्थ गमाने वाले न बने, केवल भोगी न बने योगी बने। इस प्रकार ये देवहितम यद आयु तद व्यषेम, ऐसा अन्वय करिएगा कि उस आयु को धारण करने वाले हम बन जाए, व्यषेम का अर्थ है धारण करने वाले, अर्थात अवशिष्ट जीवन हमारा कल्याण के साधन में ही लग जाए, और तुष्टवांस का मतलब अपने इष्ट देवताओं की स्तुति करते हुए, तुष्टवांस शब्द का अर्थ है। स्तुति ये कर्म का भी अंग मानी गई है और उपासना का भी अंग मानी गई है, तो कर्म करने वाले शास्त्र विहित तथा शास्त्र विहित उपासना करने वाले हम बन जाए, उससे मल विक्षेप रहित चित्त होगा। इसी मंत्र में फिर आगे कहा जा रहा है कि स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाहा, स्रव शब्द है उसका स्रवारूप बना था, स्रव शब्द का अर्थ होता है यश कीर्ति प्रतिष्ठा जिसको कहते हैं, तो वृद्ध स्रवा कहते हैं वृद्ध यानी अभिवृद्धि को प्राप्त हुआ है, खूब फैला हुआ है चारों ओर, स्रव यानी यश जिनका, उन्हें कहा जाता है वृद्ध स्रवा। तो वैदिक संस्कृति में पलने फूलने वाले लोगों में से सब लोग इंद्र को जानते हैं कि नहीं जानते हैं? सब जानते हैं। इसलिए ये माना जाता है कि इंद्र महान यश वाले हैं, कीर्ति वाले हैं, सर्वत्र उनकी कीर्ति फैली हुई है। इंद्र का विशेषण है वृद्धस्रवा, अभिवृद्धि को प्राप्त हुई है कीर्ति जिनकी। ऐसे इंद्र नह स्वस्ति, तो नह शब्द का अर्थ है अस्माकम, हमें, हमारे, स्वस्ति यानि कल्याण, और दधातु ये अंतिम पद है बृहस्पति दधातु के पास, वो यहां पर भी आएगा। तो कल्याण करे ये अर्थ निकलेगा, स्वस्ति का अर्थ है कल्याण और दधातु का अर्थ है करे। तो महान यशस्वी इंद्र हमारा कल्याण करे, हमारे हाथ की देवता है इंद्र, हस्त इंद्रिय की, तो हस्त इंद्रिय से कल्याणकारी क्रियाएं करा करके हमारा कल्याण करने में हमारे सहयोगी बने, उपकारक बने इंद्र देवता। और स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः, तो पूषा एक सूर्य का नाम है, आदित्य का नाम है, और आदित्य का एक विशेषण है, जैसे इंद्र का वृद्धस्रव है ना, पूषा का है विश्ववेदाः। विश्व शब्द का अर्थ होता है सर्व, सब, और वेदा का अर्थ है जानने वाला, सबको जानने वाला, विश्वान वेत्ति असो विश्ववेदाः, सबको जो जानता है, आदित्य से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, आदित्य सर्वज्ञ है, सबके अवभाषक हैं, सबको जानने वाले हैं। तो सबके अवभाषक पूषा नह यानी हमारा स्वस्ति दधातु, कल्याण करें। और तार्क्ष कहते हैं गरुड़ को, अर्जुन को पार्थ कहते हैं ना, क्यों कहते हैं? पृथा के पुत्र होने से। ऐसे त्रिक्षा ये नाम है आपके इनका, गरुड़ की माता का, तो गरुड़ की मां है त्रिक्षा, और त्रिक्षा के पुत्र तार्क्ष, जैसे पृथा के पुत्र पार्थ, त्रिक्षा के पुत्र तार्क्ष गरुड़। और अरिष्ट नेमी कहते हैं विघ्न विनाशक, तो विघ्नों को दूर करने में समर्थ जो गरुड़ हैं, वे हमारे कल्याण मार्ग में आने वाले विघ्नों को दूर करके हमारा कल्याण करें। स्वस्तिन तार्क्षो अरिष्ट नेमी, स्वस्तिनो बृहस्पतिर दधातु, बुद्धि की देवता मानी है बृहस्पति, तो बुद्धि की देवता बृहस्पति हमारी बुद्धि को शास्त्रानुसार निश्चय करा करके हमारे कल्याण के हेतु बने, हमारा कल्याण करे, ये इस वाक्य में प्रार्थना है। और ओम शांति शांति शांति, ये जो कहा गया है तीन प्रकार के ताप प्रत्येक को शरीरधारी को होते हैं, उनसे मुक्ति के लिए, आध्यात्मिक अधिभौतिक अधिदैविक तापों से हम मुक्त हो जाएं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।